हरे कृष्ण। विप्रलब्धो ददामिति त्वयाहं चढ्यमानिना तद्बलिकफलं भुङ्क्ष्य निरयं कतिचित् समः। विप्रलब्धो ददामिति त्वयाहं चढ्यमानिना तद्बलिकफलं भुङ्क्ष्य निरयं कतिचित् समः। विप्रलब्धो ददामिति त्वयाहं चढ्यमानिना तद्बलिकफलं भुङ्क्ष्य निरयं कतिचित् समः। इनमें से मैंने एक पग से भूलोक को अपना बना लिया और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश तथा सारी दिशाओं अपने अधिकार में कर लिया है। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग से उच्च स्वर्गलोक को अपना लिया है। श्लोक संख्या 32। प्रतिश्रुत मुदा तुस्ते निरये वास इष्यते विशंकं निरयं तस्माद् गुरुणा चानुमोदितः। क्योंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतएव नियम कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ, इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम नीचे जा करके रहो। श्लोक संख्या 33। जो कोई वचन देकर भिखारी को ठीक से दान नहीं देता, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, वह नारक के जीवन में जा गिरता है। श्लोक संख्या 34। आपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए, अतएव अब तुम्हारे वचन झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्ष तक नारक के जीवन बिताना होगा। तात्पर्य, भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचना है कि मैं धनी हूँ और मेरे पास बहुत संपत्ति है, यह मिथ्या प्रतिष्ठा है। हर वस्तु भगवान की है, उसे अन्य कोई नहीं रख सकता, यह वास्तविक तथ्य है। ईशावश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत। बलि महाराज असंदिग्ध रूप से महान भक्त थे, किंतु उसके पूर्व वे मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। अब ईश्वर की परम इच्छा से उन्हें नरक लोक जाना पड़ा, किंतु वे वहाँ भगवान के आदेश से गए थे, अतः वे वहाँ स्वर्गलोक की अपेक्षा अधिक ठाट से रहे। भक्त सदैव भगवान की संगति में रहकर उनकी सेवा में व्यस्त रहता है, अतः उसे नरक या स्वर्गवास की कोई परवाह नहीं होती। इस प्रकार श्रीमद् भक्ति वेदांत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत भगवान द्वारा बलि महाराज की बांधा जाना शीर्षक 21 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्लोक संख्या 32 में छोटा तात्पर्य उसको पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, कहा गया है नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। जो भक्त एकमात्र भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं। उनके लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक लोक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त मात्र भगवत भक्ति में रुचि रखते हैं। नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त सदैव संतुलित रहता है, वह वस्तुतः दिव्य जीवन बिताता है। भले ही ऐसा लगे कि वह स्वर्ग या नरक में गया है, किंतु वह इनमें से कहीं नहीं रहता, प्रतीत वह सदा वैकुंठ में रहता है। वामन देव ने सारे विश्व को मात्र यह दिखलाने के लिए कि बलि महाराज कितने सहिष्णु हैं, उन्हें नरक लोक में जाने को कहा, किंतु बलि महाराज ने आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की। भक्त कभी अकेले नहीं रहता, निसंदेह हर व्यक्ति भगवान के साथ रहता है, लेकिन भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण किसी भौतिक अवस्था में नहीं रहता। भक्त विनोद ठाकुर का गीत है, कीट जन्म हो जथा त्वा दास। वे भक्तों की संगति में एक तुच्छ कीट के रूप में भी जन्म लेने के लिए प्रार्थना करता है। क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अतएव जो कोई उनकी संगति में रहता है वह भी वैकुंठ में निवास करता है। आज उपस्थित सभी भक्तवृंद मातृवृंद जो श्री राधा राधिका रमण में भवन में प्रातःकालीन भागवत संघ में उपस्थित है, विशेष करके इस गृह दीनबंध प्रभु, सबसे मैं कृपा याचना करता हूँ कि इस प्रसंग में बोलने के लिए। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग जो बलि वामन प्रसंग है, जिसमें विशेष करके 19 अध्याय में जिसमें बलि महाराज को वामन देव द्वारा ठगा गया और दंडित भी किया गया, और इस जो 4-5 श्लोक में हम पढ़े कि इसमें वामन देव ने खूब डांट करके बोलते हैं, उनको अरेस्ट कर चुके हैं, अभी वरुण पास में बांध चुके हैं, बांध करके उनसे, तो ऐसे प्रसंग ऐसा है कि आप सब सुने हैं कि इंद्र को जीत करके बलि महाराज ने स्वर्ग अधिकार कर लिया और देवताओं को भगा दिया। तो स्वर्ग अधिकार करके आए तो शुक्राचार्य बोले, देखो आप जबरदस्ती मार्केट का स्वर्ग ले लिया, लेकिन स्वर्ग को पाने का जो असली आपका नाम है, अभी बेनामा नहीं हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुआ, पक्का नहीं किया। मैं कैसे पक्का करूं ना, 100 यज्ञ करने से वो सीट पक्का होता है, अभी 100 यज्ञ नहीं किया तो सीट पक्का नहीं, टेम्पररी चला जाएगा आपसे। तो बोले क्या करूं ना, मैं अभी यज्ञ कराता हूं फटाफट, विश्वजीत 100 यज्ञ करा दूंगा संचित तो हो जाएगा, फिर नहीं देवता ले पाएंगे आपसे। तो इसलिए गुरु शुक्राचार्य ने बड़े महाराज को लेकर के नर्मदा किनारे यज्ञ करवा रहे थे, और बलि महाराज त्रिलोकाधिपति थे, सब देवता भगत 3 लोक के अधिपति थे, तो बड़े सफल से यज्ञ करते गए। देवताओं ने ब्रह्मा के पास पर, ब्रह्मा बोले मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं किया, बोले जाओ। फिर दौड़ करके अपने माँ के पास आए, अदिति माता के पास। माता आदिति ने रो करके अपने पति के शरण में गए, कश्यप जी के शरण में, और उनको बड़े संतुष्ट किए। तो कश्यप जी ने बोले, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके उपाय बताता हूँ, भगवान कुछ कर सकते हैं, मैं आपको व्रत बताता हूँ, आप निष्ठा से करो तो भगवान प्रसन्न होकर के आपके काम करेंगे। तो कश्यप जी ने अदिति माता को पयव्रत विधि बताया। फाल्गुन मास में केवल 12 दिन के दूध पीकर दुग्धहार के व्रत है, उस व्रत को माता अदिति ने की तो भगवान साक्षात उनके सामने दर्शन दिए और उनके पुत्र होकर के उपेंद्र बन करके आए, वामन बन करके। बोले क्या चाहिए, बोलो माँ। बोले बस मेरे बेटों को अपने घर वापस दे दो। भगवान बोले ठीक है, वो क्या करूं। तो भगवान वामन रूप में अवतरित हुए कश्यप और अदिति से, और प्रोजेक्ट था कैसे भी बलि महाराज से देवताओं के राज्य लाकर स्वर्ग राज्य लेके इंद्र को दूं, लेकिन भगवान लड़ाई झगड़ा करके उन्हें छीन के ला सकते थे, लेकिन वो ब्राह्मण भक्त थे। भगवान कहते नमो ब्राह्मण ने देवाय गो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के भक्त है, भले ब्राह्मण कैसा, शुक्राचार्य ऐसे असुर संगति ब्राह्मण तो था लेकिन शुक्राचार्य था, लेकिन फिर भी बलि महाराज के दान और ब्राह्मण्य भक्त के कारण भगवान ने उनसे झगड़ा नहीं किए। बोले ना उसे लड़ करके नहीं ला सकता, लेकिन वादा किया हूँ माँ के पास की ला करके उनके घर वापस दूंगा, इंद्र को कैसे दूंगा, तो और कोई उपाय नहीं है तो मांग कर लाऊंगा। तो मांगने के लिए भगवान को छोटा होना पड़ा, मांगने वाला हमेशा छोटे होता है, देने वाला बड़ा होता है। तो इसलिए जन्म हो करके जन्म संस्कार करके छोटा छोटा रूप ले लिए, तुरंत वामन बन गए और तुरंत चले कि अभी उनका 99 यज्ञ चल रहा है, लेट होगा तो 100 यज्ञ हो जाएगा तो फिर रेस्ट पक्का हो जाएगा, अभी पहले 100 यज्ञ पूरा होने से पहले उनसे मांग लू ले लू राज्य, नहीं तो पक्का हो जाएगा। तो जल्दी से गए और बलि महाराज के यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट होकर के ऐसे आपने तेज रूप अपने महिमा प्रकट कराए, छोटे छोटे बालक थे स्टूडेंट, तो जितने सारे उपस्थित यज्ञ मंडप पे बड़े बड़े रथी महारथी पुरोहित याज्ञिक और सब ब्राह्मण राजा सब खड़े हो गए, देख रही है अद्भुत ब्राह्मण है, छोटा ब्राह्मण है, इतने तेजस्वी ब्राह्मण। बड़े महाराज अपने परिकर के साथ गुरु जी के साथ उठ करके बोला कि मैं तो धन्य हो गया, मेरा पुरुषार्थ धन्य हो गया, मेरा घर धन्य हो गया, मेरा यज्ञ आज पूरा हो गया, भले सो पूरा नहीं हो क्यों ना हो, आप बताइए। तो उनको भगवान को उनके पैर धोया, स्वागत किया अतिथि के रूप में, पैर धो करके उनके चरणामृत अपने सर में लिया पिया। अब देखिए जिस पैर को ब्रह्मा जी भी धो नहीं पाए, अभी धोएंगे, उससे पहले बलि ने धो लिया। हाँ, अब बलि महाराज को इन्विटेशन नहीं दिया भगवान को आने के लिए, सारे संसार में VIP को इन्वाइट किया था जगह में आने के लिए, एक्सेप्ट भगवान, क्योंकि देवताओं तो शत्रु हैं और भगवान देवताओं के पक्ष में है। तो उनको नहीं बुलाया था, बिन बुलाए भगवान उनके घर में जबरदस्ती घुसे, घुस करके अपने पैर धुलाते, कृपा करते हैं कि अद्भुत कृपा, सोचा भी नहीं जा सकता भगवान की कृपा। तो भगवान की पदधूत करके उनका चरणामृत लिया, चरणामृत शर में लिया, तो ऐसे ही तो पवित्र हो ही गया, भगवान जबरदस्ती कृपा कर लिए। उसके बाद में बलि महाराज ने बोले, देखो मेरे ये लास्ट यज्ञ है और आप इसी समय पहुंचा, लगता है कि हे ब्राह्मण बालक, आप तो कुछ जाचक कुछ मांगने के लिए आए। वामन देव के अवश्य मांगने लिया है, और क्यों आता, मुझे एक काम है, मुझे मांगना चाहिए, मैं सुना हूँ कि आप बहुत दान दक्षिणा देते हैं, तो एक बार मेरा भी एक इच्छा है पूरा। तो बलि महाराज ने खुल करके बताया क्या चाहिए, पूरा लंबा लिस्ट बोले, ये चाहिए ले लो, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ तुझे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। वामन देव बोले, भैया आपने खानदानी से बड़े आदमी, आप दे सकते हैं, लेकिन मैं रहा छोटी बोने ब्राह्मण, मेरा गुण है संतुष्टि, मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ, मुझे कोई ज़्यादा लेकर नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे जितना चाहिए मैं इतना लूँगा, या सब मुझे क्यों बोलता है। बोले फिर क्या चाहिए, ना मैं जो चाहिए मैं मांगो, ना ऐसे नहीं मांगू, अग्रीमेंट साइन करो। बोले अग्रीमेंट साइन, अभी तक मैं हजारों लाखों बड़े बड़े लोगों को दान दिया है, दानी में मेरा श्रेष्ठ है, कोई मुझे अग्रीमेंट नहीं किए, जो मुँह मांगा सो देता हूँ, मेरा क्या कमी थोड़ी है ना, वो हो सकता है लेकिन मेरे तो डाउट है, तुझे चाहिए क्या, ना मैं मुझे छोटा मोटा कुछ चाहिए लेकिन मेरा डाउट है, तू देने के मना कर दोगे, एग्रीमेंट करो। सारे उपस्थित राजन्य मंडली मंत्री परिषद बोली, ये छोटा सा बालक क्या चाहिए उसको, इतने छोटा सा 2.5 फुट के कद है उसका, वो क्या मांगे, बोलते एग्रीमेंट करो। बलि महाराज बोले, ये क्या बदल, नहीं मैं तो नहीं मांगूंगा, बोल तो नहीं दूंगा, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा मत करो ना, फिर पक्का करो एग्रीमेंट, सब सब बैठे सबके सामने बाकायदा साइन हो जाए। तो जैसे अग्रीमेंट के बाद उड़ा, शुक्राचार्य बोले, कौन है ये, इसे क्यों नहीं कर रहा। शुक्राचार्य चश्मा लगाकर जब देखे बोले, बलि केयरफुल, खबरदार ना, क्या मैं इस देख लिया, क्या ये डुप्लीकेट है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो भेष बनाकर है, कौन है, विष्णु है, सारे ले लेगा तरस मांग करके, तो ऐसे करता है नाटक तेरे साथ, तो बिल्कुल पति क्या मत करो ना, मैं उसे जवाब दिया दूंगा करके ना, अरे मुकर जाओ कोई बात नहीं, तो सब ले लेगा, मुझे दक्षिणा देने के लिए 2 रुपया भी नहीं होगा तेरे पास, तो मत दो उसको। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य को, गुरु जी को बोले, गुरु जी आप ही बोलते हैं विष्णु, हाँ 100% विष्णु है। बोले आपसे मैंने सुना हो कि विष्णु सर्वसमर्थ ना है ना, वो मैं चाहते तो मुझसे तो थप्पड़ मार के वहीं से छीन लेते ना, देख सकता है उनको कौन रुकेगा ना, फिर ये भिखारी बनकर क्यों आए, ना मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्यों है, तो इसलिए मत दो कम से कम, बच जाएगा वो भिखारी बनते उनको। बोले नहीं मैं तो उनको दे दूंगा। अरे खबरदार मत दो, नरक में जाओगे, मेरे बात नहीं मानोगे, सब में भ्रष्ट हो जाएगा, संपत्ति से नरक जाना पड़ेगा। बहुत गाली देकर शुक्राचार्य उनको रोके, बोले गुरु जी आप जो कहो। बलि महाराज ने भरी सभा में गुरु जी को त्याग दिए, गुरु त्याग के कारण वो असुर थे, अभी महाभागवत बन गए, यस महाजन बन गए गुरु त्याग। तो उन्होंने अड़िग रहे, बोले ना मैं प्रतिज्ञा क्यों दूंगा, तो एग्रीमेंट साइन हुआ, शंख दुख में पानी दिए, जो भी किए और भी घटना है। तो भगवान ने बोले, बोले अब मांगो ना, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। आप बोलो कहाँ दे दूं, यहां दे दूं, वहां दे दूं, कौन सा स्टेट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, बताओ कितने, 3 पैर, मेरे पैर में चाहिए, 2.5 फुट जिसका शरीर है उनका चप्पल का नंबर तो कितना होगा, 3-4 नंबर का होगा, वही देखा है। बोले यही स्केल ऑफ मेजरमेंट है, इसी स्केल में मैंने 3 पग लूंगा। बलि बोला, देखो तुम तो इसे नादान छोटा ब्राह्मण बालक है, तुम इमैच्योर है, तुम्हें वाणी भी इमैच्योर है, लेकिन दुनिया मुझे क्या कहेगा, तुम मेरा प्रतिष्ठा तो देखो, तुम तेरे हिसाब से मेरे पोजिशन को देखकर तो मांगो ना, तेरा पोजिशन क्या है, ना दुनिया मुझे कहेगा, देखो ये छोटा सा बालक ब्राह्मण था, उनको मांगने नहीं आया लेकिन बलि को देने नहीं आया, वो तो अपने हिसाब से देता, बेचारा को बोलना नहीं आया, उसने संतुष्ट कर दिया होता, नहीं 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 मुझे तो इतना चाहिए। अरे तेरे ये 3 पैर छोटा छोटा 2.5 इंच में 6-7 इंच की जमीन लेकर क्या कोई फ्लैट भी नहीं बनेगा उसे, क्या करे, कुटिया भी नहीं बन सकता, नहीं बस मुझे इतना चाहिए, मेरे तो काम चल जाएगा। क्या पता, भरी सभा में लाखों मंत्री संतरी जंत्री ब्राह्मण पुरोहित देवता ऋषि महर्षि सभी के सामने ऐसे दिखा रहे थे, इसी स्केल से नापूंगा, 3 पैर। अब जब बड़े महाराज माने नहीं, बोले ठीक है तेरे पर, लो क्या करो, जहां मर्जी ले लो। जब अग्रीमेंट साइन हो गया, बोले नापो ना, हाँ नापो, अरे 3 इंच 2.5 इंच का पैर था, इतने बड़ा हुआ, देखते थे सभी के सामने इतने बड़े हुआ, सभी के देखते देखते ठग दिए, दिन दोपहर में सबका सामने इतने ठगाई किए, जो दिखाए थे इतने बड़ी छोटी सी पैर, इतने बड़ी पैर हुआ, अभी उनके सामने सब देखा ना, तेरे सामने नाप लिया सारे संसार, एक ही पैर में पूरे भूमंडल नाप लिए और पूरा शरीर को बढ़ा करके पूरा अंतरिक्ष भर लिए, दूसरा पैर पूरा स्वर्गलोक तक गया, ऊपर लोक तक, बोले तीसरा पैर कहाँ रखो बताओ, तेरे और जमीन है क्या, त्रिलोकाधिपति 3 लोक तो 2 पैर में नाप लिया मैंने, खा जाएगा तेरे का। अब डांटने लगे, ये डांटने का श्लोक है, डांटते हुए तू मुझे वचन दिया था, अग्रीमेंट प्रतिश्रुति किया था, वादा क्या था देने के लिए, कहाँ गया तेरे वादा, हाँ जो वादा करते नहीं देते हैं उनको नरक जाना पड़ेगा, ऐसे डांटते। तो बुलाए गरुड़ जी को, बोले बांधो उसको, बहुत बड़ी बड़ी बात करा था देने के लिए, गरुड़ जी को बुलाए, उसको अरेस्ट करा वरुण पास में, जो बलि महाराज के सेनापति से बड़े बड़े मसूर सेनापति थे, बोले अरे हमारे स्वामी को देखो, ठग करके सबका सामने चिटिंग करके इसको अरेस्ट करके इसे कर रहा, सारे संपत्ति छीन लिया, उल्टी अरेस्ट करके डांट रहा, मारने जा रहा, वो सब अपना अपना अस्त्र लेकर के दौड़े मारने के लिए भगवान को। भगवान देखे हंसे, बोले अच्छा, अब भगवान के इशारे में आपने पार्टी लोग आ गए, नंदा सुनंदा कुमुद कुमुदाख्य सब आ गए, आ करके बोले खबरदार, एक सौ छोटे वामन मत मानो, तुम्हारे गुरु जी ऑलरेडी बता दिया है कौन है, ना डुप्लीकेट बताया था, हाँ डुप्लीकेट है, इसलिए हम मत आओ, अरे हम छोड़ेंगे नहीं, आप ठग दिया हमको, हमारे राजा को ठगा ना ठगा, बताओ आए तो सबके सामने ऐसे मारे, बलि महाराज देखे कि बुरी तरह से मर रहे हैं अपने शक्ति, हाथ जोड़ के बोले रुको बंद करो, मारे जाएंगे सब, चले जाओ, बलि महाराज करने में सब भाग कर नरक लोग चले गए, पाताल लोग चले गए, असुर सब असुर चले गए, तो भगवान अरेस्ट करे, फिर उनको डांटे, बोले बड़ी बड़ी बात कर रहा था, कहाँ कर रहा है तीसरा पकड़ को बताओ, 3 पर घूम नहीं पा रहा है, बड़ी बड़ी वादा कर रहा था, तब भगवान के वचन है, बोलते हैं कि जो प्रतिश्रुति दे करके मुकर जाता है, पालन नहीं करता, उनको नरक वास होता है, यही शास्त्र के नियम है, वो तेरे गुरु जी भी तुझे बोला कि मत मानो, तू उनके बात भी नहीं माना, तो इसलिए तुझे ग्रुप में जाना भी पड़ेगा, और इस प्रकार खूब डांट रहे, यहां तक बोल रहे हैं कि कोई अगर भिखारी को भी वचन दे करके नहीं दे तो उसको भी स्वर्ग क्या, उसको भी नरक जाना पड़ेगा, कुछ फल नहीं मिलेगा, और तू मेरे सामने इतने सामने मुझे ब्राह्मण की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया, तुझे तो नरक जाना ही पड़ेगा। लेकिन इतने सारे ह्यूमिलिएशन में थोड़ा सोचिए बलि महाराज का स्थिति को, बलि महाराज अभी आधा घंटे के पहले, 1 घंटे के पहले लाखों लोग के भरी सभा में उनका तेज था, त्रिलोकाधिपति थे, हजारों ब्राह्मण ऋषि के मंडली में बीच बैठ करके 99 यज्ञ सफलता से पूरा कर चुके हैं, स्वर्ग के मालिक हैं, इंद्र के भगा दिए हैं, इतने बड़ी पद प्रतिष्ठा, अब घर, अब ऐश्वर्य, इतने पोजिशन में रह करके बड़े आपने शान से तान से उनके एग्रीमेंट साइन की, तुझे दे दूंगा तेरे मनचाही बात ले लो, विष्णु जान कर भी उनको एग्रीमेंट किए, लेकिन अभी आधा घंटे के अंदर अब वामन देव ने अपने पराक्रम से उनको ऐसे ही वंचित कर दिए, सारे संपत्ति देखते देखते छीन गया नाप ली सारे संपत्ति, और आपने जितने महा असुर शक्ति बड़ा सैनिक शक्ति था उनका, बड़े बलशाली योद्धे योद्धा सब थे उनके सैनिक, उनको ऐसे मारे बेचारे रास्ता नहीं के भटक कर पाता, लोग भाग गए, सबको मार पीट करके सब कुछ देखते देखते छीन गए, हताश कर दिए, राज्य गया, पोस्ट गया, पोजीशन गया, शक्ति संपत्ति सैनिक परिवार सब छूट गए, अकेले उसी पोजीशन पर अभी राजा था, अभी अरेस्टेड है, वरुण पास में बंधे हैं, और सबके सामने जो हाथ नीचे करके मांग रहे थे 3 पग भूमि दे दे मुझे आचक, वही उनको ऐसे डांट रहे हैं, ऐसे करके की अपमान कर, कितने बड़े ह्यूमिलिएशन है बताओ, हम लोग को कुछ है ही नहीं, छोटा मोटा कुछ है उसको कोई बोल दे 10-20 आदमी के सामने, हमारा तो मुंह लाल पड़ जाता है, आंसू निकल जाता है, हरिनाम में आंसू नहीं निकलता, इसमें निकल जाता, लेकिन बलि महाराज को कितने बड़ी स्थिति में उनको इस प्रकार अपमानित, उनको तिरस्कृत किया गया, लेकिन बलि महाराज धन्य है, भगवत चरणामृत को स्पर्श करके प्रहलाद महाराज की जो निष्ठा था इसी कारण से प्रभुपाल लिखते असंदिग्ध रूप में कोई डाउट नहीं था कि भक्त नहीं थे, यद्यपि असुर के कुल में थे, अभी तक शायद मंगलाती भंगलाती चांडी फंडी नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी केवल प्रहलाद के पोते थे और अभी भगवान के कृपा प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इतने शुद्ध हो चुका है, इतने तिरस्कृत, इतने लांछित, इतने अपमानित होकर भी पीछे नहीं हटे, हाथ जोड़ करके भगवान, आगे अध्याय में देखेंगे भगवान आत्मसमर्पण करेंगे बड़ी ने भगवान को। लेकिन भगवान ये बात इधर एक बात इसी श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, वो कहते हैं कि विप्रलब्धो ददामिति त्वाहं चड्यमानिना, बोलते हैं जो ठग देता है, ठगा कौन, किसको ठगा, आप सभी जानते हैं, हमारे बड़े भक्त जयदेव गोस्वामी लिखते हैं कि छलयसि विक्रमणे बड़ी अद्भुत वामनम, वामन रूप अद्भुत रूप लेकर आए, किस लिए, उनका प्रोजेक्ट था ठगने के लिए, वो आए चिटिंग करने के लिए, आप बोलते हैं कि तू मुझे ठगा, बताओ। सारे भरी सभा में वो दिखा करके 3 इंच का स्केल इतने बड़े नाप लिए, देखते देखते सबके सामने बोलते तू मुझे ठगा, वचन दिया था नहीं दे रहा, अब क्या कहें, अब कोई माने नहीं, मैं सबको मार पीट के भगा दी, उनके पटेल को है, उनको सपोर्ट कर रहे, बलि महाराज हाथ जोड़ के खड़े। उनको बोले तू मुझे ठगा, तू मुझे देने के लिए कह करके नहीं दिया, और देने की बात तो नहीं कहते हैं भगवान, इसी 3 श्लोक में एक ही शब्द बताते हैं, प्रतिश्रुतम विप्रलब्ध, जो प्रतिश्रुति देता है, वचन देता है, किसको, फिर वचन से मुकर देता है, मैं ये करूंगा, वे कहकर के जब नहीं करता है तो नरक जाना पड़ेगा, यही नहीं, भले कुछ भी कहो, यहां तक भगवान कहते हैं अरे तेरे मेरे के बात नहीं, अगर तू रास्ता में भिखारी की बोल दिया मैं तुझे दूंगा 5 रुपया, अब फिर नहीं दिया तुझे भी नरक जाना पड़ेगा, अब बताओ प्रतिश्रुति के पालन का कितने बड़े महत्व भगवान इस श्लोक में बता, 3-4 श्लोक में बोलते हैं वचन दे करके पालन ना करना इतने महाघातक है, सारे पुण्य से वंचित करके नरकवासी कर देगा, वही साधारण भिखारी के उदाहरण देते हैं भगवान ने, अपने मुख से बोलते हैं श्लोक, बोलते हैं कि भिखारी को भी ऐसे करेगा तब भी नरक जाएगा, तो मुझे ऐसा किया, मैं तुझे ठगा सही किया लेकिन तू मुझे क्यों ठगा, अरे तो प्रतिश्रुति को पालन न करना इतने घातक पाप है, नरकवास करता है। मैं आज सुबह चिंता चर्चा कर रहा था किससे, बात में सुनना था कि सचमुच हम भी सब कैसे ही प्रतिश्रुति को पालन नहीं करते हैं। आप बोले कौन सा प्रतिश्रुति, प्रतिश्रुति का प्रमाण है ये तो भगवान ने अग्रीमेंट साइन किया, हम भी अग्रीमेंट साइन किया, सभी प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य, कैसे, आपने हाथ जो है, जब हम कभी कभी अग्रीमेंट पक्का करते हैं, जिसको साइन करना आता तो साइन कर लेता है, जिन्हें अनपढ़ है साइन करना नहीं आता है, बच्चे हैं बड़े हैं, वो क्या करते हैं, अंगूठे छाप लगाते हैं। अब जानते हैं जितने लोग हैं सभी के अंगूठा छाप, साइन भले मिल जाए अंगूठा नहीं मिलेगा, ये प्रकट प्रमाण है। ये जो अंगूठे अपने हाथ में 10 अंगुल है, 10 अंगुल को थोड़ा ठीक से गौर करके देखिए ये छाप क्या है उसमें, शंख चक्र देखेगा, ये शंख चक्र कहां से आया, ये शंख चक्र जब एग्रीमेंट साइन हुआ वो ठप्पा लगा दिया, बोले ले अभी मरते दम तक रहेगा ठप्पा, कम से कम उसी को तो देखो, तुम्हें कागज पेन पेपर नहीं है क्योंकि लग दो भूल जाएगा, मिटा दूंगे, इसको मिटा ही नहीं सकता। आप जन्म होने से पहले गर्भ में हम बोल रहे थे प्रभु मर गया, खूब जंत्रणा, अशीष जंत्रणा से बचाओ बचाओ, कान नाक बगड़ता हूं, इस बार तो आते ही केवल आपके भजन करूंगा, केवल आपके भजन करूंगा, ये जो प्रतिश्रुति दे रहे थे भगवान, बोले चलो साइन करो एग्रीमेंट, तो भगवान ने लिखा पड़ा आपने हाथ में ही ठप्पा लगा दिया, एक अंगुष्ठप चिन्ह नहीं 10 अंगुल में चिन्ह रख दिए आपने, शंख चक्र चिन्ह निशान लगा दिए, बोले ये एग्रीमेंट तू मुझे प्रतिश्रुति दिया मेरे भजन करेगा आज, मैं यस प्रभु जी करूंगा। अब आते ही हम देखे क्या करते, प्रतिश्रुति भंग के आते ही जब अपने हाथ को देखे तब याद होना चाहिए, अरे ये चिन्ह क्या है, उन्हीं के चिन्ह है, उसको मिटा भी नहीं सकते आपने, वो अमिट रहेगा जब तक शरीर रहेगा, तब तक हमारा एग्रीमेंट के साथ हमारे चिन्ह है, हमारे साथ नहीं भूल सकते हैं लेकिन करते नहीं है, तो ये प्रतिश्रुति को हम भंग कर रहे हैं, जन्म से पहले गर्भ से प्रतिश्रुतिबद्ध होकर आकर के भगवत भजन नहीं करते हैं, भोग में लिप्त हो जाते हैं, ये सबसे पहले भगवान की वादा को मतलब तो नरक कामित होना ही है, उसके बाद में प्रतिश्रुति, उसके बाद में कई कई आप जैसे भगवान जो लोग आ करके भगवान के बाद भगवान के भक्त उनके प्रतिनिधि गुरु के सामने दोबारा प्रतिश्रुति करते हैं कि मैं अभी प्रतिश्रुति देता हूं, मैं कम से कम जावत जीवन रहूंगा, 16 माला जप करूंगा, 4 नियम पालन करूंगा, आपके आदेश अनुसार जीवन निभाऊंगा, उससे भी कोई मुकर जाते हैं, अपने नाम गोत्र बदल कर भी उसको ही बदल देते हैं, छोड़ देते हैं, कर नहीं पाते, ये सब प्रतिश्रुति क्या क्या हमारा गति होगा। केवल ये नहीं, जितने यहाँ माता है विवाहित विवाहित पुरुष हैं वो भी प्रतिशत देते हैं। विवाह के समय में पति पत्नी और पत्नी पति प्रतिशत देता है ना कि कम से कम इसी लाइफ तक मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपका साथ दूंगा, ये भी प्रतिशत देते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, उसको भी पालन नहीं करते। जब ये भिखारी के दिया हुआ प्रतिश्रुति की मिट जाने से नरक गति होता है, तब ये प्रतिश्रुति जो यज्ञ के सामने, ब्राह्मणों के सामने और इसी प्रकार के सामने किया जाता है, उसका क्या परिणति होगा सोचा जा सकता। तो इसलिए इस श्लोक में प्रतिश्रुति विप्रलब्ध, जब ठक जाते हैं, अपने वचन को पालन नहीं कर पाते हैं, अरे संसार की वचन तो ठीक है, कहीं कोई ऐसा कोई नहीं है तो मिटा जा सकता है, मिटा दे, लेकिन जो अमिट है, जो अकाट्य है, जिसको मिटा ही नहीं जा सकता, उसके लिए कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। एक प्रतिश्रुति को जैसे भगवान कृष्ण के जन्म होने से पहले अब कंस ने देवकी को भरी रोड के ऊपर, दोनों ओर से खचाखच भीड़ था, मथुरा हाई रोड के ऊपर में उनको गला पकड़कर काटने वाला था, वही मर्डर कर रहा था। अरे कई प्रकार से समझाया वसुदेव, थक गए, बोले हुआ नहीं, माना नहीं, अंततः वसुदेव ने प्रतिश्रुति दिए, वहीं पे भरी हजारों लोगों के सामने अपने वचनबद्ध हुए वचन दिए, बोले हे युवराज कंस, मैं आपको प्रतिश्रुति देता हूं, वचन देता हूं कि अभी तक संतान हुआ ही नहीं, अब होगा कि नहीं पता नहीं, होगा भी बेटा होगा बेटी होगा वो भी पता नहीं, अगर आप बोलते हैं कि जो बेटा होगा मरेगा, आपको मारेगा, तो मैं अभी से प्रतिश्रुति देता हूं, आज तो पहले दिन है शादी के बाद, विदाई में प्रतिश्रुति देता हूं सबके सामने, जो संतान होगा मैं आपको हवाले कर दूंगा जन्म होते ही। कंस उसी से अग्री कर गए। कंस जैसे महा असुर पकड़कर नहीं मानता था मार डालूंगा, इतने निलज्ज अकृतित्य कृत्य करने के लिए तैयार हो चुका था, वो जब वसुदेव का प्रतिश्रुति सुना, उनका हाथ से खड़ग नीचे हो गया, वो भी शीतल ठंडा पड़ गया, बोला हम मान लिया, ठीक है, तू तो बात पक्का कर रहा, पक्का बात को ध्यान रखना, अरे आपको पता है मैं कभी वचन से मुकरता नहीं, यस छोड़ दिया, बोले जा छोड़ दिया। अब वसुदेव अपने वचन पालन भी कर रहे थे, प्रथम लड़का हुआ होते ही जद्य भी कंस बोला था, वो बोला नहीं था कि अभी ले आओ करके, जद्य भी कंस को पता था, लेकिन फिर भी वसुदेव ने तुरंत लेकर के आए, वो कंस उनको वापस भी कर दिया, बोला क्या उसको डांटना, लेकिन वसुदेव अपने वचन को मुकर नहीं रहते। लेकिन आप बोलेंगे तो फिर भगवान को कैसे हटा दिए, जब प्रतिश्रुति दिए थे सारे संतान जन्म होते कंस के हवाले करेंगे तो भगवान को किसी गोकुल लेकर चले गए, ये किसी अपने वचन झूठा कर दिए। तो वसुदेव जी स्वयं कहते हैं देवकी को, बोलते मैं मेरे वचन से कभी नहीं मुकरता, मैंने प्रतिश्रुति दिया हूं, लेकिन प्रतिश्रुति का मूल्य नहीं रखा कंस ने, जिस दिन मैं उनको वापस लेकर गया था मुझे वापस कर दिया, लेकिन विश्वास नहीं किया मेरे ऊपर, मेरे सब संतान को मारने लगा, तो फिर एग्रीमेंट का क्या मतलब रहा, उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दिया, वो तोड़ दिया तो मैं भी तोड़ दूंगा, उनके तरफ से पहले तोड़ा तो मैं तोड़ सकता हूं। तो इसी प्रकार कोई एग्रीमेंट हो जो पहले कोई तोड़ता है तो तोड़ा जा सकता है इसे दुष्टों के साथ, लेकिन जो अकाट्य है, जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जो निभा कभी मिटा नहीं जा सकता, उसको फिर कैसे करें। वो जो सब आध्यात्मिक प्रतिश्रुति हाँ है, जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो वचन है, हम इससे अगर मुकर जाएंगे तो क्या गति होगा। तो इस गति को सामने रख करके हम लोग को कितने सतर्क होना चाहिए, कितने सतर्क होना चाहिए, ताकि इस तो इस क्षेत्र में प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि जो भगवान के भक्त है, भगवान नारायण के, उन्हें कभी डरते नहीं है। अब बलि महाराज कि इसी प्रकार अपमानित, लांछित, तिरस्कृत अवस्था है, इतने अवस्था पर भी वो पीछे नहीं हटे। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान क्यों ऐसा दंडित किए, खुद ही उनके साथ चिटिंग किए, क्यों किए। प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान इसलिए किए, वो दिखाना चाहते थे सारे संसार को कि देखो मेरे भक्त कैसे होते हैं, कितने सहनशील होते हैं, कितने सहनशील मेरे भक्त होते हैं। इतने बड़े पोजिशन पर था, उनके सामने तीन लोक में उनका सामना कोई नहीं था, सबके नेता था, ईश्वर था, उन्होंने सबके मालिक था। अभी आधा एक घंटा में वो हाल कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं पीछे हटता है। गुरु के बात नहीं माना, किसी के बात नहीं माना, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटा, डंट की रहा है, आत्मसमर्पण पर्यंत किया है मुझे, ये मेरे भक्त होते हैं। कितने भी अपमानित, लांछित, कितने भी कष्ट हो वो पीछे नहीं हटते हैं। ये भक्त के गुण है। इस भक्त को गुण को संसार के सामने दिखाने के लिए इसलिए बलि महाराज को सामने करके इस प्रकार के उनको बांध करके डांट रहे हैं। ये भक्तों के गुण होता है। जब समीक ऋषि, जब श्रृंगी ने साप दे दिया, समीक ऋषि खूब गाली दी अपने बेटा को, बोले तू परीक्षित महाराज जैसे राजर्षि, अब इतने बड़े ऋषि है, भक्त है, आप उनको ऐसे कर दिया, ऐसे किया। बोले क्या करूं, अगर परीक्षित महाराज गुस्से में आकर के कुछ एक्शन ले तब तो फिर मिट जाए, लेकिन एक्शन थोड़ी हो लेंगे, मैं जानता हूं वो भक्त है। तिरस्कृता विप्रलब्धा सत्ता क्षिप्ता हतापिच नास्य तत् प्रतिगृहंती तद भक्तो प्रभवापिह। ये कहते हैं कि जो भगवान के भक्त है, तद भक्ता, जो भगवान नारायण के भक्त है, उनके पास सारे समर्थता है, सारे प्रभाव है, सारे पराक्रम है। सब होते हुए परीक्षित महाराज के कम थे, चक्रवर्ती राजा थे। एक ब्राह्मण लड़का को ऐसे मिटा देते, उड़ा देते उसको, लेकिन कुछ नहीं किए, वो करेंगे नहीं, क्योंकि भक्त है, राजा नहीं है केवल, वो भक्त है। भक्त का गुण बताते हुए समीक ऋषि कहते हैं तिरस्कृता। तिरस्कृत मतलब आपको कोई अपमानित करे, तिरस्कार करे, भली प्रकार से बलि महाराज को तिरस्कार किया गया। उनके तिरस्कार को बलि महाराज क्या उनके सामने उनके पार्टी के लोग, सैनिक लोग मारने के लिए दौड़ कर आ गए। इस प्रकार के तिरस्कार किया जाता है, लांछित चीटिंग किया जाता है, लेकिन उनको ही मार के भगा दे, भगवान तो भगवान है। तो बोलते तिरस्कृता, तिरस्कृत होते भी भक्त उसको सहन करेगा, कोई उसके बदले एक्शन नहीं लेगा। तिरस्कृता विप्रलब्धा, विप्रलब्धा मुझे ये शब्द आया है, विप्रलब्धा, विप्रलब्धा का मतलब है ठगा जाना, बुरी तरह से ठगा जाना। ऐसा बात नहीं थोड़ा बहुत ठग दिया, नहीं थोड़ा बहुत नहीं, सरासर 100% ठग दिया। जितने लोग बैठे हैं पूरे बलि के स्टेडियम में, जग्गे अरे नाम जो बैठे थे, सबके सामने दिन दहाड़े ठगे, दिखाए खोल करके, कोई फोटो उठाए तो उठाए होंगे, जो मेजरमेंट स्केल दिखा रहे थे, अपने पैर दिखा रहे थे, वो कैसे दिखाए और तुरंत ही बदल गए। अरे कहां से, तेरी छोटी सी तो कद था, इतनी बड़ी पैर कहां से निकलेगा, संसार नाप ले, वो कर दिए, त्रिविक्रम बन गए, बामन से विक्रम बने। ये ठगाना नहीं, अभी तक बामन देव को हम प्रणाम करते हैं, छलयसी विक्रमणे बड़ी अद्भुत बामनम। अब छलयसी विक्रमणे, आपने विक्रम में छले, छलने वारी छलना नायक भगवान वामन देव है, वो छलने के लिए ही बोना बोना बनना ही छल नहीं था। अरे तुम इतने बड़े हो, क्यों इतने साइज बना कर लाया था, ये साइज बना नहीं ठगने के लिए, शुरू से प्लान बनाया था मैं ठगूंगा, क्या करूं ठग करके लाऊंगा, लड़ाई झगड़ा करके तो देगा नहीं, तो ठग करके लाऊंगा। ठग कर लाने के लिए ठगी पोशाक पहन करके, मेकअप करके, बोने बन करके गए थे, ये बोने थोड़ी थे, न ब्राह्मण थोड़ी थे, ऐसे नाटक के जाकर छलन करने के लिए ही बलि को जाकर ठगे। ठग करके उनको बोलते हैं तू ठगा, कैसे भगवान के बाद, लेकिन फिर भी इतने भरी स्वभाव में बुरी तरह से ठगा जाकर भी विप्रलब्धा, इस प्रकार ठगे जाने पर भी भगवान के जो भक्त होते हैं वो प्रतिकार नहीं करते हैं, मन में विचार भी नहीं लाते, ठीक है भगवत इच्छा। एक प्रभु जी मुझे बता रहे थे, भक्तों के जीवन में दो ही शब्द होता है जिनमें उनको जीवन चलता है, क्या शब्द होता है, एक हरि की कृपा, दूसरा शब्द हरि की इच्छा। अगर आपने हिसाब से काम बना तो भगवत कृपा है, हरि कृपा हुआ, काम बन गया, हरि कृपा। अगर आपने हर से काम नहीं बना तो हरि इच्छा, अब क्या करें अब नहीं रहा, अब तो कर नहीं सकते, सहन करना ही पड़ेगा, हरि इच्छा करो, सीट नहीं मिला हरि इच्छा, फेल हो गया हरि इच्छा, सब असफलता हरि इच्छा, सफलता में हरि कृपा। ये भगवान की दो ही, भक्तों के पास में दो ही शब्द होता है, इसमें उनका जीवन चलता है। तो इस प्रकार भगवान ने उनको भरी स्वभाव में इतने प्रकार ठगे, विप्रलब्धा तिरस्कृता विप्रलब्धा, ऐसे प्रकार ठगे जाने के बाद भी ऐसे कहते हैं कि प्रसंग आता, जो पुतना बलि महाराज की बेटी थी रत्नावली, उन्होंने जब वामन देव को पहले आए जगह अरे नाम देख करके, इतने सुंदर बालक था, कितने मनोहारी रूप, उनका बहन रत्नावली आकर बोली वाह क्या छोटा सा लाला है, क्या रूप है, ऐसा मेरा बेटा होता मैं तो स्तन में गोद में बैठा करके स्तन पिलाता उनको, इतने सुंदर लाला है। और ये आंख बंद करके मन में विचार कर ली, ओहो हो मैं उनको स्तन पान कराता, इतने स्नेह उमड़ाया उनके देख करके, इतने सुंदर रूप था वामन देव के आंख बंद कर, अरे जिनके प्रभाव से इस स्वर्ग में पेड़ कल्पतरु के पोजीशन पाते हैं, कल्पतरु डिजायर फुलफिलिंग ट्री, ये डिजायर फुलफिल करने का ताकत कहां से आता है? भगवान के प्रभाव से आता है। जिनके प्रभाव से पेड़ पौधे में ऐसे प्रभाव आ जाए, किनकी इच्छा पूरा कर दे, वो साक्षात जब विराजमान है, वो कोई इच्छा कर पूरा ना हो, वो इच्छा की वही की वही पूरा हो गया, वही क्यों? हाँ तो बेटा बनेगा, दूध पिलाएगा मुझे। अब दूध पिला, आंख बंद करके भाव मुद्रा से वामन देव को दूध पिला ही रहे, इसे आंख बंद करके था। अब हल्ला गुल्ला हुआ, आंख खुली, अब देखा तो ठग करके सारे मारपीट करके बारिश कर डाला पिताजी ने, ये बदमाश इतने खतरनाक है। अभी अभी तो देखा था, छोटा सा लाला बना था, अभी कितने बाप रे बाप, क्या ये ठगा मेरे पापा को। गुस्से में बोला, तुझे मैं स्तन पिलाऊंगी, स्तन पिलाऊंगी, विष पिला के मार डालूंगी तुझे। हाँ स्तन पिलाऊंगी तो स्तन में विष मिलाकर पिला डालू, वो भी इच्छा पूरा होगा, क्योंकि वो तो हरि थे, हरि कृपा से वो भी पूरा हुआ। वो भी इच्छा पूरा हुआ, भगवान बोले हाँ भी करना पड़ेगा, वो भी स्तन में पिला मुझे, वो भी करेंगे। तो इस प्रकार भगवान उसके सामने इस प्रकार ठगे, लेकिन ठगने के बावजूद बलि महाराज ने पीछे नहीं हटते, पीछे नहीं हटते हैं। तिरस्कृता विप्रलब्धा सत्ता, कोई भगवत भक्त को कोई साप साप भी दे, अभिसंपात करे, जैसे परीक्षित महाराज को अभी ने किया, बिना दोष में बिना विचार करके अभिसंपात कर दिया। बोले अभिशाप करने पर भी सोचेंगे नहीं कि उसने क्यों किया, गड़बड़, उनसे जुक्ति करेंगे, तुम्हें ऐसा किया, तुझे मारूंगा पिटूंगा केस करूंगा ये करूंगा, नहीं, उसको मान लिए, वो विषय मान ले, हरि की इच्छा नहीं तो वो कैसे करता, हरि कृपा मान करके मान लेंगे। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता, शापित होने पर भी उसको भगवान की कृपा मान करके मान लेंगे, ठीक है भगवान के ही इच्छा, दुख विप्रलब्धा सप्ता। खिप्ता, खिप्ता से तुम लोग कोई आपको आक्षेप करे, आप किए नहीं लेकिन दोष आपको लगाएगा, अरे बिना मतलब कि आपको आपको क्या बोलते हैं उसको, आक्षेप दे, आप ब्लेम करे आपको, है ना,
आरोप,
एक्यूजेशन, आरोप, आरोप बिना दोष में आपको कोई मिथ्या आरोप आपके ऊपर लगाए, तब भी हरि कृपा से मान लो, ठीक है, आपको सामना करने के नहीं जाकर नास्यत प्रतिकृबंती, वो जाकर बोलेगा नहीं भाई झूठा है, ऐसा मत कहो, मैं कहीं किया नहीं, इसे बोलेंगे नहीं, बोलेगा ना हरि कृपा, भगवान की इच्छा है, वो बोलता है मान लो, ठीक, वो क्या कर, झूठा आरोप सही, वही लगाता, क्यों लगाता है, वो क्या लगाएगा, भगवान उनके द्वारा लगाते हैं मेरे ऊपर, तो मान लो, हरि कृपा समझ करके अभिशाप को स्वीकार कर लेता है खुशी खुशी में। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता, खिप्ता, हता, हता पिचर, कोई मारेगा पिटेगा गला भी काट दे तब भी प्रतिकार करने का विचार मन में नहीं लाएंगे, ये भगवान के भक्तों के गुण। और भक्त कैसे, न तद भक्ता प्रभवोप्यः, ऐसे महाप्रभाव संपन्न प्रभावशाली होकर भी तब भी नहीं करेंगे पूर्ण प्रभाव, ऐसे हम लोग के जैसे अर्डिनरी लल्लू पंचू नहीं है, कोई दो थप्पड़ मारा गुस्सा तो आता था, मार पीट लूं, दांत तोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, छोटा भी हूं, बल नहीं, शक्ति नहीं, पावर नहीं, धन नहीं, कोई लोग समर्थ सपोर्ट भी नहीं है, तो चुपचाप वापस आ जाऊं, आकर बोलूंगा मैं बड़े सहनशील, क्या है मैं शांत कर ले, ये कोई सहनशीलता है? तेरे पास कुछ है ही नहीं, अब को सहनशीलता हुआ, नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन। अब हम सहनशीलता बताते हैं, हम दुनिया में लाल कपड़ा पहनकर बोलते हैं कि हम रिनाउंस श्याम बैरागी है, अरे तू क्या बैरागी क्या, तो तेरे पास था क्या, तेरा ना तेरे बाप का था क्या बताओ, कुछ तो था ही नहीं, तू बैरागी क्या था। कि इसको छोड़ा, अभी आगे प्रसंग में आएगा, धन्य है क्योंकि बलि महाराज उनके पत्नी सपत्नी भगवान के चरण धोए थे, उनके पत्नी भी रत्नावली भी विंध्यावली भी इतने बुद्धिमती हो गई थी, सारे भरी सब वहां तक भी आश्चर्य कर देखे विंध्यावली की बुद्धि को, आगे आएगा प्रसंग। उनको जाकर जब बलि महाराज ने बोले, प्रभु आप तो मेरे सब कुछ ले लिए, मुझे तो नहीं लिए, मेरे शरीर आपने सर दे दी, बोले तीसरे पर रखी अपने, ये बात जब कह रहे थे तीसरा पग मेरे मुझे ले लीजिए, तो उनके पत्नी आकर के डांटी, बोले देखो अभी तक बुद्धि नहीं सुधरा उसको, इतने बड़बड़ बात कर रहा है, तुझे बुद्धि ठिकाना लगाने के लिए प्रभु ने तुझे बांध करके डांट रहे हैं पीट रहे हैं, फिर भी तेरा बुद्धि नहीं सुधरा, फिर बोलता है शरीर मेरा है ले लो, ये तेरा शरीर है तेरा है,
ये तो उन्हीं के दिया हुआ है, उन्हीं के दिया हुआ शरीर, तेरे कैसे हो गया, तेरे कैसे हो गया। सचमुच हम केवल ये शरीर और शरीर के संबंधी और शरीर के जो अक्वायर किए संपत्ति को उसी के चर्चा में दिन बिता देते हैं, उनको बटोर में, उन्हीं के चर्चा में, उन्हीं के काम में, लेकिन ये शरीर जो दिया उसको नहीं सोचते हैं। ये कबीर जी की बात मेरा याद आता है, मैं शायद बोला भी था आपको, नथनी दिया यार ने उनके चर्चा बार बार, नाक दिया जो करतार ने उनको दिया विसार। समझ में आ रहा ना, दो चार पांच स्त्रियां जा रही थी और किसी का शादी तय हुई थी किसी का साथ, और जो रिंग सेरेमनी होता ना सगाई, तो उसमें हार आदि देते हैं, तो किसी ने एक नथनी नोज रिंग दिया था एक लड़की को, तो नोज रिंग सोने का था, उसमें डायमंड के स्टोन जड़ा हुआ था, तो जो जा रही थी सबके सामने उसी की चर्चा दो घंटे से, देखो मेरे ऐसे देख करके प्रसन्न हो गए, माला के नथनी दिए हीरे जड़ा हुआ है सोने का पूरा, उसी के चर्चा करते करते कबीर जी जा रहे थे, बोले रे और कोई नहीं, केवल इसी की चर्चा में चल रही है, सब सुन भी रहे हैं, वही बोल रही केवल इसी बात, तो आकर उनके बगल में खड़ा होकर बोल दी बात को, बोले नथनी दिया यार ने, तेरे संबंध ने नथनी दे दिया, उसके चर्चा दो घंटा से कर रहे बार बार, और जो नाक दिया करतार ने, ये नाक नहीं होता था नथनी क्या काम का होता, उसके दुआ भी सब उसको भूल गया कि नाक ना होता था नथनी कैसे देती उसकी चर्चा तो एक बार भी नहीं करता। तो हम लोग ऐसे ही है, ये संसार की चर्चा में पूरे बुद्धि वृत्ति शक्ति सामर्थ्य लगा दी, उसी में समय लगे हैं, लेकिन ये जो बुद्धि ये शक्ति ये जो फिगर दिया किसी ने दिया, किसी के बल पर जी रहे हैं, किसी के बल पर टिके हैं, किसका है ये सब चीज। बिंधावली ने बात में कहता है आकर अपने पति को डांट करके सभी के सामने बोलता है, ये मूर्ख मेरे पति अभी भी नहीं सुधा, बोलता है ये मेरे शरीर, तेरे शरीर कैसा हुआ, तेरे सर कैसा हुआ, यहां तक बोलते क्या बुद्धि। इसलिए ये सभी को हम स्वयं भी है इसी में जब तक हम अपने हाथ की ओर नजर करें, ये देख लें कि विप्रलब्धा शब्द इसी से प्रमाणित होता है, आपने एक अंगुष्ठ छाप नहीं है, दशांगुलम, दस अंगुली में छाप लगाकर भगवान ने प्रमाणित कर दिए, तो मेरे स्टाम्प लगाया शंख चक्र के चिन्ह, तो मेरे वादा क्या है मेरे भजन करने के लिए, जीवन पर्यंत मेरा करना है, कर रहा है। अब इसको देख ली, इसी हाथ में कितने बेईमानी करते हैं, कितने क्या क्या करते हैं, लेकिन इस हाथ को देख लो जिसको मिटा भी नहीं जा सकता, वो अमिट चिन्ह भगवान ने थोक दिए शंख चक्र लगा करके, तो केवल उन्हीं के होकर रहना, उन्हीं के नौकर बन करके, उन्हीं के काम करना, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना, उन्हीं के भजन करना, इसीलिए हाथ मिला, इसी के लिए तन मिला, इसी के लिए बुद्धि, इसी के लिए वृत्ति, सब कुछ इसी के लिए मिला, और उसको नहीं करेंगे तो बाकायदा चीटिंग है, बाकायदा विप्रलब्ध है, बाकायदा छल है, वादा कर पे वचन को पूरा ना करना है, भयानक नरक में जाएंगे, और नरक में जाते ही रहते हैं। एक तो वादा सबसे पहले की उसको तोड़ते हैं, उसके बाद कितनी बार फिर तोड़ते हैं बार बार। तो कम से कम इस भगवान की इस तीन चार श्लोक की कड़ी में जो वचन कह कर कि वापस चले जाने से नरक गति होता है, अब तो हम कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं, तो इसी प्रकार महापाप, इस प्रकार नरक जाने के लायक जो पाप कर चुके हैं, अब क्या करें। अब ये श्लोक को चर्चा करके इस क्लास में आकर सुन करके हम सन्नत होना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। आप बोले क्या सतर्क हो, क्या करें, भगवान वो भी गारंटी देते हैं, बोलते हैं अभी भी समय है, जो कुछ किया लगा सब कुछ सब छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं ब्रज, मेरे अकेले शरण में आ जाओ, और किसी के शरण में नहीं, एक केवल मेरा ही शरण में सो छोड़कर आ जाओ, मैं वादा करता हूं तेरे ऊपर फिर भी, अहम तम सर्व पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापेभ्यो मुक्खयिष्यामि। मां सोचो क्यों डरता तुमने, नरक फरक सब बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, आओ तो मेरे पास, मैं तुझे सारे पाप से तुरंत ही छुटकारा दिला दूंगा। अब हमारे पास ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है कि मरने से कुछ घड़ी समय से पहले जमराज के पुलिस आकर के अरेस्ट करते करते अजामिल ने इनडायरेक्टली अपने बेटा का नाम ले लिया, वो जब छूट गया नरक जातना से, तो हम लोग तो अभी कुछ है समय, ऐसे तो अभी पूरा हालत नहीं हुआ है, तो क्यों ना कर ले, क्यों ना सतर्क हो जाए। तो तो इस जो पाप अभी तक हो चुका है वो भी मिट जाए, और जो होने वाले आगे पीछे सारे सर्वज्ञ पाप भी हो, थोड़ा बहुत पाप के लिए नहीं करते, इस जीवन के पाप नहीं, अनंत कोटि जीवन में जितने अनंत कोटि पाप किए हैं सारे डिलीट बटन दबा देंगे। एक बार बाई मिस्टेक डिलीट बटन दब जाए तो हार्डी सब कुछ रहेगा, वो अरे साफ नील क्लीन हो जाएगा। तो भगवान ने डिलीट बटन के ऊपर अंगूठी लगाकर बैठे, आप शरणागत हो जाओ तो मैं प्रेस करूं। प्रभुपाद जी के उनके शिष्य मंडली में कई उनको पूछा, बोले प्रभुपाद हम लोग तो पता नहीं अभी हमको समझ में आ रहा है कितने पाप किए हैं, अभी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी मन में भरा पड़ा है, हृदय में मन में कितने पाप विचार भरा पड़ा है और कितने किए हैं और पता नहीं हिसाब किताब, तो हमारा क्या सुधार होगा, कैसे हमारा गति होगा, कब तक समय चाहिए उसके पाप को मिटा कर भगवान। प्रभुपाद जी डांट कर बोलते हैं सो जस्ट वन मिनट, वन मिनट। सब भक्त लोग जो सुन रहे थे प्रभुपाद जी की बात सीरियस, प्रभुपाद जी बड़े आंख निकाल बोलते जस्ट वन मिनट, तीन बार बोले वन मिनट, सब वन मिनट, इतने जन्मों का पाप, इतने अभी इसी जन्म में कितने बेईमानी, कितने क्या क्या, कितने धोखा दिया, सब यस वन मिनट। प्रभुपाद हाथ उठाकर बोलते वन मिनट, बोले यू हैव टू सरेंडर टू लॉर्ड, सरेंडर होने में आपके ऊपर कितना समय चाहिए, अब भी मान लो अब भी खत्म हो जाए, आप भी अब बल इन इच आवर कोर्ट, अब हमारे ऊपर है, भगवान ने थोप दिया, अब देखो आपने को देख करके, आपने अंगुल्याग्र को देख करके, आपने बुद्धि वृत्ति और अपने इच्छा को देख करके अभी भी हमारे पास से सुवर्ण सुजोग है, हम भी समर्पण कर सकते हैं। और समर्पण करने का कोई बड़ी भारी कठिनाई नहीं है, कुछ नहीं है, जिस मन से इस संसार को अपना लिए हैं, इस संसार को अपना नहीं जा सकता है, कोई अपना नहीं पाया, ना अपना जा सकता है ना पाएगा, ये संभव ही नहीं, वो अपना है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, और जो अपना है था और होगा भी, उसी को अपनाने में दिक्कत क्या, वो तो पहले से ही था, अभी भी है और होकर ही रहेगा, उस जो नहीं था उसको छोड़ करके जो है उसको पकड़ लेना बहुत आसान बात है, करना हमको है, भगवान तो हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए घर में घुस करके चिटिंग करके बांध करके पीट करके सिखाते हैं, बलि महाराज भक्त थे उनके द्वारा हम सबको सिखाते हैं, हम लोग तो बलि महाराज जैसे नहीं है कि भगवान हमको पीटेंगे मारेंगे डांटेंगे, हम लोग तो पता नहीं हम उसके लायक तो है नहीं, लेकिन कम से कम बलि महाराज के चरित्र अवगाहन में श्रवण में हम इतने आप तक सुन ले, जब बलि महाराज को भगवान ने इसे मार पीट कर सिखाते उनके कल्याण करते हैं, तब इस प्रसंग को सुन करके हम सतर्क हो जाए और कल्याण हो जाए, है ना, इस प्रसंग में यही महती शिक्षा है। भगवान ने छलनायक ठगी ठग के सरदार बन करके आकर के दोष दे करके किस प्रकार सिखाते हैं, भगवान के इसी प्रकार की शिक्षा है, इससे हम सीख लेना चाहिए। जो प्रतिश्रुति जो प्रतिज्ञा जो वादा हमने किए थे उसको पूरा करने में लग जाए, और आगे भी जो करते हैं करने के समय सतर्क रहे, और जो करते हैं उसको निभाने के लिए सतर्क रहे। हरे कृष्ण। बाबू जी कुछ कमेंट करेंगे दिनवंत प्रभु न किसी का कोई प्रश्न है कमत आमत, हाँ प्रभु जी पूछेंगे। यस
अच्छा, हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी रोचक कथा सुनाई। महाराज मेरे दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न तो यह है कि जैसे हम दीक्षा के समय गुरु को वचन देते हैं, दीक्षा के समय गुरु को भी वचन देते हैं, और उसमें भी कई बार जो है उसको खरा नहीं उतरते, तो अब हमने उसका रिजल्ट अभी आपने बताया कि क्या होगा, क्या दुर्गति होगी हमारी, तो जो व्यक्ति बिल्कुल भी इस प्रोसेस से बाहर है वो शायद हमसे ठीक है नरक जाने से बचेगा।
आप तो समझ रहे वेरी खुले खुले बात है, भिखारी के दिया हुआ वचन तोड़ेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, और गुरु जी के दिया हुआ वचन तोड़ेंगे तो क्या होगा सोच लीजिए, बोलने का क्या है, सामने बात है आपके, है ना।
दूसरा ये महाराज की जो इस प्रसंग में हालांकि भगवान की जो लीलाएं हैं वो अकल्पनीय हैं, उनको हम समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से, पर जैसे कि प्रहलाद महाराज के पौत्र थे और भक्त थे, महाभागवत थे, और फिर भी भगवान लगता है कि जैसे कि देवताओं का फेवर करते हैं। हालांकि देवता कहीं भी जो है भक्ति के मामले में ना तो प्रहलाद महाराज के सामने टिकते हैं ना ही बलि महाराज के सामने टिकते हैं, तो इसको कैसे समझा जाए। और ये भी है कि हाँ उनकी प्रसिद्धि और उनका ग्लोरीफाई करने के लिए, संसार को दिखाने के लिए भी, तो ये भी एक पक्ष है। और दूसरा कि अपेरेंटली लगता है कि भगवान जो है देवताओं को
फेवर करते हैं, फेवर करते हैं ना।
हाँ जी,
देवताओं को फेवर इसलिए करते हैं, देवता और असुर में केवल ये मुख्य भेद है कि देवता भगवान को मानते हैं, दिक्कत आने से देवता भगवान के पास जाएंगे, उनके बात मानेंगे, विश्वास करेंगे, और असुर भगवान के पास नहीं जाएंगे, उनको मानने अपने बलबूते पर मानेंगे। यही फर्क है मुख्यतः देवता और असुर, है ना। तो देवताओं को इसलिए फेवर करते हैं कि देवता हमेशा भगवान को मानते हैं, कोई परेशानी हो भगवान के पास जाएंगे, पर विश्वास उनकी बात मानते हैं, लेकिन असुर कभी नहीं मानेंगे।
जैसे कि बलि महाराज, और बलि महाराज तो महाभागवत है,
महाभागवत तो नहीं थे, असुर के राजा थे,
असुर के तो राजा थे, पर भक्त तो थे, भगवान
भक्त बने, है ना, इसलिए बोलते हम ही से बन जाएंगे, ये बने भगवान तो उसको देवासुर संग्रह मार डाले, है ना। नहीं भक्त थोड़े थे, क्योंकि केवल उनका क्रेडिट पामन देव कथा में ही प्रसंग नहीं बोला आपको कि क्यों कोई प्रश्न मन में उठता है कि बलि महाराज तो असुरों के राजा थे और देवताओं का जमकर विरोध कर रहे थे और हमेशा स्वर्ग मार पीट करके इंदिरा आदि को कितने के भगवान को बार बार आना पड़ा, कितनी परेशानी कर रहे थे उनको, देवासुर संग्राम में अमृत छीन कर ले लेते धनंतर के हाथ में, वही बलि महाराज थे ना थे, यस, इतने सारे गुंडे गर्दी का टेररिस्ट जैसा थे वो, फिर उनको क्यों, क्योंकि प्रहलाद महाराज कोई प्लस पॉइंट नहीं था, एक ही प्लस पॉइंट था, महाभागवत प्रहलाद को उनके बहुत प्यारे थे। मैं कई बार इस बात कहता हूं, अपना भले कुछ भी गुण ना हो, कोई गुण ना हो, अवगुण पे पूरे भरे हो, लेकिन कोई गुणवान भगवान के भक्त को अगर पकड़ लो, आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, उनके भले वेटिंग लिस्ट में रहे, है ना, यही बात है।
महाराज जी, राज्य तो सारा बलि महाराज का था, और ठगे जाने पे बलि महाराज का संकल्प तो चेंज नहीं होता, लेकिन पूतना का भाव चेंज होता है। और तो पूतना का भाव चेंज होने में, जैसे कृष्ण लीला में पूतना सा भी, पूतना का रोल करवाना है भगवान को, तो इसलिए चेंज हुआ है, या पूतना का भाव चेंज होने के बाद पूतना का रोल मिला कृष्ण लीला में?
वो तो कृष्ण लोन मिला, भाव चेंज हुआ, यह पूछते ना क्यों चेंज हो गया उनका?
जी, जी, जी।
मैं बताया क्लास में कि पति पत्नी ने भगवान को चरण स्पर्श करके चरण धोए, वो बेटी चरण नहीं धोया था, भगवत स्पर्श से बुद्धि सुधर जाता है, अभी उनका नहीं सुधरा, उनका उनका सुधर गया, उनका नहीं सुधर। आप भगवान के चरण में आकर के इतने कर लो भगवान स्पर्श, तो आप ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएंगे, तो उन्होंने नहीं की थी, तो खड़े होकर मन में दूध पिला रहे थे, चरण धोने पास नहीं, इसलिए उनका वही सफल हो गया, वो भी ठीक किया, इच्छा से भी किया, लेकिन पति पत्नी ने आकर के परात में पानी लेकर के भगवान के चरण को धोए, वो चरणामृत प्रिय, तो उनका तो बुद्धि शुद्ध होना ही था, है समझे? हाँ जी,
जो हम वचन की एक परिभाषा देखें, मतलब वो पूरा जब संकल्प लेके पूरा वचन होता है, या किसी को कह देने मात्र से भी वो वचन हो जाता है।
यहाँ पर भगवान ने श्लोक कहे कि भिखारी को मैं कुछ दे दूंगा करके वचन देगी, कौन अग्रिमेंट साइन करते हैं? इतने वचन में पूरा नहीं होगा, नरक जाना पड़ेगा, अब बाकी जो बाकायदा करते हैं उसका तो सोचिए क्या, इसलिए ये श्लोक कहा गया। हाँ जी,
हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच महाराज जी। जैसे अभी प्रसंग आता कि जो बलि महाराज ने उनको वर दिया था, तो परिस्थिति चेंज हो गई, बाद में वामन देव ने अपना शरीर विस्तारित कर लिया, तो वो चाहे तो अपना वचन तोड़ भी सकते थे। ऐसे हमारे जीवन में भी आता कि परिस्थिति चेंज हो जाती है, हमने वचन कुछ परिस्थिति में दिया था, बाद में परिस्थिति चेंज होने के कारण तो हम उसको तोड़ देते, तो ऐसे अवस्था में क्या
तोड़े नहीं, तभी डांटे खाए, राजी हैं अभी तक,
अब जब तोड़ जाते क्या परेशान क्या मिलेगा दंड, सोच लीजिए आप परिस्थिति का दोष देंगे। बलि महाराज की परिस्थिति सरासर उनके कोई भी होगा हम जैसे होंगे बोलेंगे ना मिस्टेक तो आपका, आप ठगे हैं बोलेंगे ना, नहीं दोष उनको देंगे। लेकिन फिर भी बलि महाराज को देखिए उनका वो नहीं दोष दिए, सारे जितने उपस्थित थे उनके गुरु तक बोले नहीं गलती उनका है, डुप्लीकेट बनकर आया है ठगने के लिए। लेकिन बलि महाराज बोले ना, इतने बुद्धि शुद्ध हो चुका था उनका, इतने शुद्ध बुद्धि हो चुका था, इतने महाभाग स्तर को चले गए थे, तो हम तो हुए नहीं ऐसा अशुद्ध बुद्धि से। तो क्या हुआ जैसे परिस्थिति चेंज हो गया मानेंगे नहीं, तो जैसे बलि महाराज के बाकी सैनिक सेनापति से तो क्या हुआ उनका, किसका गला कटा, किसका पेट फटा, किसका हाथ कटा, भागे नरक में गए, ऐसे हो परिस्थिति का क्रम चेंज हो गया, चेंज हो पर ऐसा भी ट्रीटमेंट होगा। हाँ जी बोलिए माता, फिर आता हूँ आपको सुना, बोलिए बोलिए आपका आवाज बढ़ा। प्रयास करो
कैसे
वचन को पूरा करें ना, उसमें
वचन पूरा करेंगे तो लालच सीखता है देने वाला, अगर वचन उसको कहता आप पूरा करिए तो लेने वाला का लालच नजर आता है कि आप मेरे को नरक का आगे आप वचन पूरा करने की जा रहे हैं, बट लेने वाला का मन में लालच नहीं है, वो चाहता है कि नरक जाने से बच जाए, तो क्या इसके लिए कोई व्यवस्था है, कोई सिस्टम है?
नरक बच जाओ दूंगी ना, बाकी पूरा ना करो नरक में बचो, अब यही कहना चाहते हैं नरक में बच जाओ लेकिन मेरा बात पूरा ना करो।
मतलब हाँ मतलब कह रहे हैं देने वाला
जब बात पूरा करेगा तो नरक जाने में बच जाएगा, बात नहीं पूरा करेगा तो नरक में जाएगा।
बट देने वाले को ये समझ में नहीं है कि नहीं दूंगा तो मैं नरक में जाऊँगा, उसको ये चीज की समझ नहीं है, बट लेने वाले को समझ है, वो लेना नहीं करता, कहते नरक में ना जाए, तो क्या और कोई इसका प्रयास या और कोई समाधान है इसका कि वो नरक से ना जाने से बच जाए, एक उसकी चेष्टा है, उसको लेने का लालच नहीं है।
क्लास नहीं, यही सेम प्रसंग हुआ था जो साखी गोपाल है ना, साखी गोपाल की कहानी आप पढ़ेंगे जो छोटा विप्र है, उनके उनके बड़े विप्र के लड़की को शादी करने की इच्छा था नहीं, लेकिन वो इसलिए जबरदस्ती कर रहा था, इतनी परेशानी उठाया कि उन्होंने मुझे वचन दिए हैं, अगर वचन नहीं पूरा करेंगे उनका सारे तपस्या नष्ट हो जाए, नरगामी हूँ, उनको बचाने के लिए चल कर आया दोबारा वृंदावन, ठाकुर जी को चला कर लेकर गया इसी कारण से, है ना।
महाराज जी जैसा मुझे समझ में आया आपने कहा अगर सामने वाला वचन तोड़ दे तो आप भी वचन तोड़ सकते हैं, तो अपना व्यवहार दूसरे को देखकर थोड़ी बदलना होता है, अपना व्यवहार दूसरे को देखकर थोड़ी बदलना होता है,
नहीं बदलेंगे तो अच्छा
नहीं, पर आपने कहा
जा सकता है,
नहीं आपने कहा तोड़ सकते हैं,
मैं उदाहरण भी दिया ना, क्या उदाहरण था,
उदाहरण ठीक था लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में तो दूसरा तोड़ेगा दूसरा तोड़ता रहेगा।
वसुदेव जैसे सत्य प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं तो आप तो हर मिनट में तोड़ने वाले हैं, आप क्या समझ रहे हैं, हम लोग तो वैसे दशा में
नहीं, ये तो दिल को तसल्ली देने के लिए ठीक है ना,
तसल्ली देने, अगर आप किसी के साथ वचनबद्ध हैं दोनों तरफ से साइन हुआ है, अगर उसी ने तोड़ दिया तो आप आपके ऊपर भिटो है, आप चाहे तो रख सकते हैं तोड़ भी सकते हैं, आपको दोष आरोप नहीं होगा, है ना। ये भूल जाएगा तो दोष तो मिलेगा, अरे मैं बताना हमारे 10 उंगली में चिन्ह है फिर भी देखते देखते डेली बहतुम देते भूल जाते हैं, भूलना भी तो एक दोष है ना, एक से बटन तोड़ना एक दोष है, डबल दोष हुआ कि भूल गए और दोष। हाँ जी
मतलब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ नॉट एज एन एक्सक्यूज, बट वैसे जैसे कोई हम भागवतों में पढ़ते हैं कि जो हरि की शरण लेते हैं उनके अगर वो ऋणी भी होते हैं, जो हरि की एकमात्र शरण लेते हैं अगर वो ऋणी भी होते हैं देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, जन साधारण के प्रति, लेकिन हरि की शरण लेने से वो ऋण से मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसा होता है महाराज की जैसे हम अगर हमने कोई वादा भी किया है या ना पूरा करना भी एक ऋण है, एक तरीके से एक दोष है, ना वादा पूरा करना भी एक ऋण है एक तरीके से एक दोष है, लेकिन अगर हरि की एकमात्र शरण लेते हैं अगर वो वादा ना भी पूरा कर पाए तो हरि की शरण लेने से वो हम उससे बच सकते हैं, क्या ये बात सही है महाराज?
यही बात तो मैं समझा रहा था और यही बात मैं कह रहा था, कुछ नहीं दिया, सारे दोष मुक्त हो जाएंगे हरि से, मुक्ति होने का ही उपाय है। और कुछ प्रभु जी कुछ बोलना चाहते?
धन्यवाद आपका। यहाँ तो भगवान थे और भगवान ने ठगी कर लिया तो उनका गुणगान हो रहा है और हम किसी से ठग के चक्कर में फंस जाते हैं और मानो तो तब भी बचे।
देखिए अपने ओर से दिया हुआ वचन को ना तोड़े। बलि महाराज जब जान गए ठग रहे, लेकिन जब जान गए भगवान करके तब फिर वो अड़िग रहे, मतलब भगवान के सामने तो होना चाहिए। लेकिन आप अगर किसी ठग के चक्कर में फंस गए और जान गए ठग करके, फिर बदल जाना चाहिए भगवान थोड़ी, यही नियम है। टीट फॉर टैट यही नीति है, जैसे को तैसा। अगर कोई ठग के साथ और ठग जैसा व्यवहार करना चाहिए, साधु के साथ साधु तो व्यवहार करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार बीस है इसी प्रकार डोज मेडिसिन का होना चाहिए, लो डोज होने से काम नहीं होगा ऐसा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की संवेद भक्त वृंद की,
भक्ति आश्रय कृष्ण स्वामी महाराज की।